ये आकाशवाणी है। अब आप धर्मेंद्र मणि राजेश से समाचार सुनिए। ब्रिक्स के 17वें शिखर सम्मेलन के आउटरीच कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। सम्मेलन के दूसरे दिन आज पर्यावरण, COP30 और वैश्विक स्वास्थ्य पर एक सत्र आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर में सत्र को संबोधित करेंगे। ब्राजील के रियो डी जेनेरो से हमारे संवाददाता सुधिंद्रा की एक रिपोर्ट।
परिसर की संरक्षण से जुड़े भारत द्वारा लिए गए ठोस कदमों की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे। जनमानस और भूमि के हित में काम करते हुए विकास के मार्ग में बढ़ने पर वह अपना सुझाव देंगे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, प्रकोप निर्वहन से जुड़े व्यवस्था का समाधान, बायोफ्यूल सहयोग, बिग कैट योजना की जानकारी दी जाएगी। ब्राजील में भारत के एम्बेसडर दिनेश भाटिया ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री के स्टेट विजिट के दौरान जुलाई 8 तारीख चार MOUs पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश को अत्यंत महत्वपूर्ण खनिजों, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं का अपने स्वार्थ के लिए हथियार के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए। रियो डी जेनेरो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान संवाद सत्र में श्री मोदी ने कहा कि महत्वपूर्ण खनिजों और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाकर आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित और लचीला बनाने की आवश्यकता है। भारत ने कहा है कि ब्रिक्स के नेताओं के घोषणापत्र में ग्लोबल साउथ के देशों की अधिकतर चिंताओं को शामिल किया गया है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले दिन के समापन के बाद संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव दम्मू रवि ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुपक्षीय वैश्विक संगठनों में सुधार की आवश्यकता की बात जोरदार तरीके से कही।
He reiterated that the global organizations of the 20th century lacked the capacity to deal with the challenges of the 21st century. And therefore, he underscored the importance of reforming the multilateral organization. He called for a multipolar and inclusive world order and stated that the global governance institution must undergo urgent reform to reflect the contemporary realities and times.
श्री दम्मू रवि ने यह भी कहा कि इस शिखर सम्मेलन में पहलगाम आतंकवादी हमलों की निंदा सभी देशों ने खुलकर की। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र भारत के पड़ोसी देश को एक कड़ा संदेश देता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के घरेलू उपकरणों की प्रदर्शन क्षमता ने स्वदेशी रक्षा उत्पादों की वैश्विक मांग को बढ़ा दिया है। नई दिल्ली में आज नियंत्रक सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत के रक्षा क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं।
हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ हमारा बजट न बढ़े बल्कि उस बजट का राइट डिप्लॉयमेंट एट द राइट टाइम फॉर द राइट ऑब्जेक्टिव भी उतना ही जरूरी हो। आज हमारे डिफेंस सेक्टर की ओर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमने शौर्य दिखाया है हमारे सेना के जवानों ने, उसके बाद हमारे इंडिजिनस प्रोडक्ट्स की ग्लोबल डिमांड और बढ़ रही है।
कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने खनन क्षेत्र के विकास, जन कल्याण तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। श्री रेड्डी आज जयपुर में 7 सितारा और 5 सितारा रेटिंग प्राप्त खदानों के सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2030 तक 300 बिलियन जैव अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि देश की जैव प्रौद्योगिकी व्यवस्था ने एक दशक में तेजी से प्रगति की है और 50 स्टार्टअप से बढ़कर अब लगभग 11,000 हो गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा है कि मणिपुर की स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने के संकेत मिल रहे हैं। संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक के समापन के बाद आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष मणिपुर में स्थिति अधिक सामान्य हो रही है। उन्होंने कहा कि यह शांति की शुरुआत है और दोनों पक्ष बातचीत कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 8 लाख रूपये का इनामी एक माओवादी मारा गया। मुठभेड़ आज बस्तर संभाग के बीजापुर जिले के राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में हुई। पुलिस ने घटनास्थल से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा है कि दागी परीक्षार्थी वर्ष 2016 की स्कूल सेवा आयोग की परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष अप्रैल में पश्चिम बंगाल में 25,752 माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती रद्द कर दी थी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।